आकाशवाणी रांची से प्रस्तुत है प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, प्रादेशिक समाचारों के साथ मैं पूनम केरकेट्टा। पहले मुख्य समाचार। राजधानी रांची समेत राज्यभर में कल से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। 15 मई तक नागरिक स्वयं अपने मोबाइल से दर्ज करा सकेंगे अपने मकान का ब्यौरा। क्यूएस रैंकिंग में शामिल होने वाला झारखंड का पहला संस्थान बना आईआईएम रांची क्यूएस एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग में पहली बार बनाई जगह। रांची में कल से 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का होगा आगाज। ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग होगी प्रदर्शित। कोडरमा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को अपहरणकर्ताओं से कराया सकुशल मुक्त, 3 आरोपी गिरफ्तार। और आगामी 17 से 21 जून तक रांची में 12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन, झारखंड पहली बार कर रहा मेजबानी। और अब समाचार विस्तार से। राजधानी रांची समेत राज्यभर में कल से जनगणना का पहला चरण शुरू होगा। इस चरण में 15 मई तक नागरिक स्वयं अपने मोबाइल के माध्यम से अपने मकान सूचीकरण से संबंधित ब्यौरा ऑनलाइन अंकित कर सकेंगे। इसके बाद प्रगणक 16 मई से 14 जून तक मकानों की गणना करेंगे। जनगणना का दूसरा चरण अगले वर्ष 9 फरवरी से 28 फरवरी तक चलेगा, जिसमें जनसंख्या की गणना होगी। जनगणना में जानकारी डिजिटल माध्यम से जुटाई जाएगी। इसके लिए 33 प्रश्नों को सरकार द्वारा अधिसूचित किया गया है। यह कार्य प्रगणकों द्वारा घर घर जाकर किया जाएगा। जनगणना 2027 के बारे में किसी भी जानकारी के लिए राष्ट्रीय टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर जारी किया गया है। मकान सूचीकरण और मकानों की गणना से जुड़े किसी भी सवाल के जवाब के लिए अपनी भाषा में 1855 पर डायल कर सकते हैं। आईआईएम रांची ने पहली बार अंतर्राष्ट्रीय क्यूएस एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग में जगह बनाई है। संस्थान के निदेशक प्रोफेसर दीपक कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि आईआईएम रांची ने देश के अन्य आईआईएम के बीच चौथा स्थान अपने पहले प्रयास में हासिल करने में सफलता हासिल की है, जो कार्यकारी प्रबंधन शिक्षा में इसके बढ़ते कद को दर्शाता है।
जो हम इंडियन कंटेक्स्ट में पढ़ाते हैं उसको इंटरनेशनल मार्केट के अंदर कैसा देखा जाता है, और वो चीज हम इस बार जो है आपके ईएमबीए प्रोग्राम के अंदर इंट्रोड्यूस कर रहे हैं, और इससे हमारा जो इंटरनेशनल फुटप्रिंट है वो भी थोड़ा और स्ट्रेंथन होगा। और अभी हम 3 बैच जो हमारा एग्जीक्यूटिव एमबीए का है एप्लीकेशन आज से ही स्टार्ट कर रहे हैं, और ये एप्लीकेशन 1 मंथ तक ओपन रहेगा, और उनका जो बैच है वो July 1st के अंदर स्टार्ट होगा।
राजधानी रांची में कल से 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का आगाज हो रहा है। केंद्रीय रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ ने आज रांची में प्रेस वार्ता में बताया कि मेले में ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा पर आधारित स्कूली बच्चों द्वारा पेंटिंग की प्रदर्शनी भी लगाई जाएगी।
स्कूल के बच्चों के द्वारा जो ऑपरेशन सिंदूर की विजय की जो कलाकारी की है उसकी प्रदर्शनी लगी है, जिसका अवलोकन पूरे रांची के लोग कर पाएंगे। सांस्कृतिक महोत्सव, स्वदेशी मेला, ऑपरेशन सिंदूर विजय की चित्रकला, ये 3 एक साथ कार्यक्रम हो गए। अब इसी तरह अन्नपूर्णा आहार केंद्र है, वहाँ जो बढ़िया झारखंडी खाना बनाएगा उसको भी प्रोत्साहन है तो सम्मान करेंगे।
श्री सेठ ने बताया कि महोत्सव में झारखंड की लोक संस्कृति, कला और स्वदेशी उत्पादों का भव्य संगम देखने को मिलेगा। नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी ने राज्य सरकार की कार्यशैली पर सवाल उठाया है। श्री मरांडी ने एक सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि राज्य में अधिकारियों के तबादले अब सामान्य प्रशासनिक प्रक्रिया नहीं बल्कि एक संगठित कारोबार का रूप ले चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि राज्य का प्रशासन अब अधिकारियों नहीं बल्कि दलालों की फौज के नियंत्रण में है। राजस्व और भूमि सुधार विभाग ने जानकारी दी है कि राज्य का ऑनलाइन भूमि रिकॉर्ड पोर्टल झारभूमि वेबसाइट आज से 5 मई तक तकनीकी सुधार के कारण अस्थायी रूप से बंद कर दिया गया है। विभाग की ओर से जारी सूचना के अनुसार इस दौरान सर्वर डाउन रहने के कारण पोर्टल से जुड़ी सभी सेवाएं बाधित रहेंगी। इसमें खासतौर पर म्यूटेशन सहित अन्य ऑनलाइन भूमि संबंधी कार्य नहीं हो सकेंगे। आकाशवाणी के ताजा तरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर लॉग ऑन कर सकते हैं। ताजा समाचार एक्स हैंडल @AIRNewsAlerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के एक्स हैंडल @AIRNews_Ranchi और फेसबुक पेज आकाशवाणी न्यूज रांची, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR न्यूज रांची पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं। पश्चिम एशिया संकट के बीच देश में घरेलू एलपीजी की आपूर्ति 100% सुनिश्चित कर दी गई है। पेट्रोलियम मंत्रालय की संयुक्त सचिव सुजाता शर्मा ने आज प्रेस वार्ता में बताया कि लगभग 93% सिलेंडर डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड प्रणाली के माध्यम से ही उपलब्ध कराए जा रहे हैं, जिससे पारदर्शिता और दक्षता दोनों में सुधार हुआ है। उन्होंने बताया कि तेल कंपनियों के कार्यकारी निदेशकों की 3 सदस्यीय समिति और राज्य सरकारों के समन्वय से व्यावसायिक एलपीजी की निरंतर आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है।
डोमेस्टिक एलपीजी की सप्लाई 100% एश्योर की गई है। हमारे किसी एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर पर कोई ड्राई आउट नहीं है और हमारी ऑनलाइन बुकिंग लगभग 98% तक इंक्रीज हो चुकी है। डिलीवरी ऑथेंटिकेशन कोड से लगभग 93% डिलीवरी एलपीजी सिलेंडर की डिलीवरी की जा रही है। कमर्शियल सप्लाई अभी भी 70% पर रेस्टोर है।
विधानसभा अध्यक्ष रविन्द्रनाथ महतो ने जामताड़ा जिले के नाला प्रखंड मुख्यालय में आज आदिवासी ग्रामीणों के बीच पारंपरिक वाद्य यंत्रों का वितरण किया। मौके पर उन्होंने कहा कि सरकार पुरानी परंपराओं, सभ्यता, संस्कृति, लोक कला, लोक नृत्य को बचाने और पुनर्जीवित करने की दिशा में सार्थक पहल कर रही है।
सारे धूमपुरिया भवनों में वाद्य यंत्र वितरण करने का निर्णय ले चुका है और निर्णय प्रारंभ भी हो गया है। तो आज झारखंड आदरणीय मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी के ओर से इस तरह नेतृत्व के नीचे चल करके पूरा झारखंड आनंद में है, वाद्य यंत्र के साथ है, नाचना गाना बजाना सारा काम कर रहे हैं और सुख शांति से जीने का काम कर रहे हैं।
कृषि मंत्री शिल्पी नेहा तिर्की के नेतृत्व में आज आदि निवास की टीम ने मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से मुलाकात की। इस दौरान टीम ने मुख्यमंत्री को आदि निवास डिजिटल ऐप के अनावरण के लिए आमंत्रित किया। यह ऐप देशभर के आदिवासी युवाओं को एक साझा मंच पर जोड़ने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। ग्रामीण विकास मंत्री दीपिका पांडे सिंह से आज ट्रांसजेंडर समुदाय के सदस्यों ने मुलाकात की। इस दौरान सामाजिक भेदभाव, रोजगार के सीमित अवसर और स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंच पर विस्तृत चर्चा हुई। मौके पर ट्रांसजेंडर समुदाय के कल्याण, सशक्तिकरण और मुख्य धारा में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए ठोस कदमों और नीतिगत पहल पर भी विचार विमर्श किया गया। कोडरमा पुलिस ने तिलैया थाना क्षेत्र से एक नाबालिग के अपहरण मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। इसके साथ ही पुलिस ने नाबालिग को सकुशल बरामद भी कर लिया। जिले के पुलिस अधीक्षक कुमार शिवाशीष ने बताया कि नाबालिग के रिश्तेदार ने ही अपहरण की साजिश रची थी।
जो 14 साल का बच्चा है चंदन कुमार, उसको हमने रिकवर कर लिया, सकुशल बरामद कर लिया और 3 मोबाइल्स भी सीज कर लिए हैं। इसके अलावा जो रिकॉर्डिंग्स हमारे पास फोन में है, उसमें ये क्लियरली पता चल रहा है कि इन लोगों का प्लान था कि कुछ देर नेगोशिएट करेंगे परिवार के साथ, यदि परिवार रेडी नहीं होगा तो फिर बच्चे को इनका प्लान था कि मार दिया जाएगा। पुलिस की त्वरित कार्रवाई करें, बच्चे का जान बच गया और 24 घंटे से कम समय में बच लिया।
स्केटिंग रांची में आगामी 17 से 21 जून तक 12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन किया जाएगा, जिसकी मेजबानी पहली बार झारखंड कर रहा है। इसे लेकर रोलर स्केटिंग एसोसिएशन ऑफ झारखंड के प्रतिनिधिमंडल ने विभागीय सचिव मुकेश कुमार से मुलाकात कर सहयोग और तैयारियों पर चर्चा की। और अब बुलेटिन के आखिर में मुख्य समाचार। राजधानी रांची समेत राज्यभर में कल से शुरू होगा जनगणना का पहला चरण। 15 मई तक नागरिक स्वयं अपने मोबाइल से दर्ज करा सकेंगे अपने मकान का ब्यौरा। क्यूएस रैंकिंग में शामिल होने वाला झारखंड का पहला संस्थान बना आईआईएम रांची क्यूएस एग्जीक्यूटिव एमबीए रैंकिंग में पहली बार बनाई जगह। रांची में कल से 3 दिवसीय सांसद सांस्कृतिक महोत्सव सह स्वदेशी मेले का होगा आगाज। ऑपरेशन सिंदूर की विजय गाथा पर स्कूली बच्चों की पेंटिंग होगी प्रदर्शित। कोडरमा पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए एक नाबालिग को अपहरणकर्ताओं से कराया सकुशल मुक्त, तीन आरोपी गिरफ्तार। और आगामी 17 से 21 जून तक रांची में 12वीं नेशनल रैंकिंग स्पीड स्केटिंग चैंपियनशिप का आयोजन, झारखंड पहली बार कर रहा मेजबान। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का ये बुलेटिन समाप्त हुआ। अगला प्रादेशिक समाचार बुलेटिन कल सवेरे 8:30 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।